ये आकाशवाणी है। अब आप शशांक कुमार से समाचार सुनिए। संसद के संयुक्त सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा जारी है। लोकसभा में भाजपा के रामवीर सिंह विधूड़ी ने चर्चा की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की सराहना की। श्री विधूड़ी ने कथित रूप से दिल्ली में आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी विभिन्न केंद्रीय योजनाओं को लागू नहीं करने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार की आलोचना की। विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण पिछले सालों की तरह ही था। उन्होंने कहा कि सरकार बेरोजगारी की समस्या को दूर करने में विफल रही है। उधर राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा की किरण चौधरी ने कहा कि सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने के लिए महत्वपूर्ण पहल किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य देकर उनकी आय सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं। चर्चा जारी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आज समाप्त हो गया। प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं ने आज रोड शो, घर घर जाकर प्रचार, प्रेस कॉन्फ्रेंस और जनसभाएं की। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने आज जंगपुरा में एक जनसभा की। जनसभा में आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों को धोखा दिया है। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने एक जनसभा को संबोधित किया और वो फिलहाल रोड शो कर रहे हैं। वहीं दिल्ली कांग्रेस प्रमुख देवेंद्र यादव ने चुनाव जीतने का भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने शासन के दौरान लोगों के कल्याण के लिए काम किया है। 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के लिए मतदान बुधवार को और मतगणना शनिवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने मतदान के दिन सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक दिल्ली विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु की एक एक सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध मतदान समापन तक 48 घंटे की अवधि के दौरान जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संगीतकार चंद्रिका टंडन को उनके म्यूजिक एल्बम त्रिवेणी के लिए ग्रैमी पुरस्कार मिलने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम और उद्यमी, परोपकारी और संगीतकार के रूप में उनकी उपलब्धियां सराहनीय हैं। उन्होंने चंद्रिका टंडन को लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। प्रयागराज में महाकुंभ में आज बसंत पंचमी के अवसर पर तीसरे अमृत स्नान में 2 बजे तक 1,64,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई है। लाखों श्रद्धालु अभी भी संगम में आ रहे हैं। आज सुबह बड़ी संख्या में लोगों ने गंगा आरती में हिस्सा लिया। अब तक करीब 34 करोड़ लोग महाकुंभ में आ चुके हैं। सरकार ने बताया है कि 3 अक्टूबर 2024 को शुरू होने के बाद से अब तक पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए देश भर में 6,00,000 से अधिक आवेदन मिले हैं। लोकसभा में आज एक लिखित उत्तर में कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने बताया कि योजना को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। पायलट योजना के अंतर्गत अब तक भागीदार कंपनियों ने 1,27,000 से ज्यादा इंटर्नशिप प्रदान की है। कोयला और खान मंत्री श्री किशन रेड्डी ने कहा कि वर्ष 2030 तक कोयला उत्पादन बढ़कर 153,03,00,000 टन होने की उम्मीद है। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि विकसित भारत 2047 के लिए घरेलू कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने 2030 तक 14 करोड़ टन कच्चे कोयले के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बताया है कि NVS-2 अंतरिक्ष यान को कक्षा में स्थापित करने के दौरान कल एक तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ा। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा है कि उपग्रह को निर्धारित कक्षा में स्थापित नहीं किया जा सका क्योंकि उपग्रह के थ्रस्टर में कुछ समस्या आ रही थी। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों में निशानेबाजी में पंजाब की सिफत कौर समारा ने महिलाओं की 50 मीटर 3 पोजिशन में स्वर्ण पदक और कर्नाटक के 15 वर्षीय जोनाथन गोविन एंटनी ने पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। पदक तालिका में सर्विसेज पहले, कर्नाटक दूसरे और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। Under-19 T20 विश्व कप विजेता की भारतीय टीम की 4 खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट की टीम में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।